Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Aaj ke is ank mein, hum desh-videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath-saath share bazaar ki halchal par ek nazar dalenge aur pramukh khabron par charcha bhi karenge. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए के भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
और अब सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर. अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड स्पेशल वन आवर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन विद गेन्स. सेंसेक्स इंक्रीजेस बाय 63 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस एट 25,869. मेजर एशियन इंडिसीज एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
घरेलू शेयर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 63 अंक बढ़ा. निफ्टी 25,869 पर पहुंच गया. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भी बढ़त का दौर बना रहा और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी दर्ज की गई.
And before we take our major headline stories in detail, let's have a look at the disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और लेते हैं आज की पहली खबर. दीपावली के उपलक्ष्य में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई. मुहूर्त ट्रेडिंग विक्रम संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक है. यह ट्रेडिंग इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई. सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 84,426 पर और निफ्टी 25 अंक बढ़कर 25,869 पर बंद हुए. इस बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी सकारात्मक माहौल बना रहा. मिड कैप इंडेक्स 0.2% से अधिक बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त 0.9% की दिखाई दी.
The Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange conducted Muhurat trading on the occasion of Diwali, marking the beginning of Samvat 2082. Both the indices ended today's special trading session with marginal gains. Sensex increased 63 points to close at 84,426, while Nifty added 25 points to settle at 25,869. Meanwhile, the broader market at the Bombay Stock Exchange remained in positive zone. The mid-cap index advanced over 0.2% and the small-cap index climbed 0.9%.
और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में बढ़त दर्ज की गई. बढ़त दर्ज करने वाली कंपनियों में बजाज फिनसर्व का शेयर 1.4% से अधिक बढ़ा. एक्सिस बैंक के शेयर में 0.8% और इन्फोसिस के शेयर में 0.7% से अधिक की बढ़त दिखाई दी. गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों में कोटक बैंक का शेयर 0.8%, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 0.6% और एचसीएल टेक का शेयर 0.5% से अधिक गिरा.
Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 21 sectors ended in positive territory, except for the consumer durables, which remained flat. Among the top gainers, industrials as well as telecommunications advanced more than 0.5%. Commodities rose nearly 0.5%, and capital goods added 0.4%. In the laggards, Bankex as well as Realty fell nearly flat.
Or
AKB, just looking at the Mahurut trading today, it was low volume. The markets went up by 63 points, the Sensex specifically. Could you tell us something about why there is so much excitement around Nifty Metal right now? Is it in terms of domestic sales? Have they found a new market for base metals, for instance, in China and other Central Asian countries? Because our exports market have been hit, and the U.S. tariff policy still hasn't eased to our liking.
No, it is not because of that. What is happening with the base metals index is essentially there's an expectation that there would be an uptick on India's manufacturing activity. If you look at the second quarter companies' results in the early sense, the manufacturing companies have done rather well. So demand for metals, which is the basic raw material for these manufacturing companies, they are expected to come and knock the doors of the metal sector, which is why my sense is that the metal index has seen a sudden rise. On the larger point that you talked about the Mahurat trading, it has been rather muted. But remember, this has come on the back of at least 3 days of sustained rise in the stock prices at a time when you have just completed a huge round of IPOs, and with markets now gearing up for some more IPOs. Now, when you have such large IPOs, clearly the existing investors are not keeping quiet. They are pulling out of the existing investments and keeping some of that money to invest in these IPOs to book further profits later on. So when they pull out money, so the market naturally goes through some sort of volatility. So if you saw the manner in which the recent IPO of company not WeWork, but after that there was another company which came up. I'm forgetting the name, but that IPO has really done very well. So compared to 1.4 lakh crore last year in the full calendar year, you have already amassed around 80,000 crore of IPOs in this financial year already. So the IPO pressure notwithstanding, you are seeing the markets staying resilient, and the metal index is rising because of the demand they see in the manufacturing
sector. AKB, you are clearly echoing the thoughts of the Reserve Bank of India in its monthly bulletin for October, that India is a resilient economy. Even in terms of corporate sales, they have spoken about it going up by 7.2% in the previous financial year. Apart from metal, and they have also mentioned about small cap IPOs playing a major role in the upward gains that the economy has seen right now. What about IT? That's been hit by the US tariff policy, but there has been some relaxation in terms of H-1B as well. So valuations have stayed at the current levels. Nifty Bank has crossed 58,000. It saw a minor correction as well. Tell us about the future of banking in India, because those valuations have been going up on an incremental basis, day-to-day sessions.
Well, surely, you know, I mean, just to correct myself, that the company that I was referring to was the LGU IPO, one of the largest IPO in this year and in the last 5 years or so, was the LG IPO, which mobilized around almost 15,000 crore from the market. So in spite of that, the market has stayed firm. Now, coming to your question on the IT sector, now, what is happening in the IT sector? Yes, there are some doubts about the H-1B visa setback that the IT sector has got. But please remember, in the last fortnight or so, the IT sector has also benefited from a couple of very good pieces of news. One is the huge order that the Infosys has got in the UK market, in the NHS, That's number one. And number two is the large number of offshoring of IT businesses are happening in India. And for example, the Alphabet, which is the parent company for Google, has decided to invest $15 billion in creating a data artificial intelligence center in Andhra Pradesh. Now, what does it mean? It means essentially $3 billion of investment every year, next 5 years, which means that hiring more people and techies. Now, instead of your sending Indian techies to the US, waiting and pending the H-1B visa clearances, what was supposed to work against Indian IT is actually has worked in favor of the Indian IT professionals. So broadly speaking, I would say that the Indian IT scenario, yes, there are still many, many major question marks, but on the whole, there is a kind of a sliver of a hope or a silver line that I can see.
Well, let's head for a short commercial break. Please stay tuned on Market Mantra. Welcome back to Market Mantra. We're discussing about the stock market performance with AKB, as we fondly call him on Market Mantra. AKB, once again, good to have you on the program. I also asked you about Nifty Bank. That's crossed 58,000 with a minor correction in today's trade, which was very, very brief. CPI for September is at 1.2%. It's an all-time low right now, and a lot of it, these figures are linked to the repo rate of the central bank, the Reserve Bank of India. Are we likely to see a boost in lending practices by banks? And this is on the foundation of how public sector banks and private sector banks have already improved their net profitability on a quarter-to-quarter basis. And even their asset allocations have improved. And let's not forget that the NPAs have come down substantially as well. So what is the future for banking, or is there some risk likely in the future as well?
Well, I think as of now, the banking sector seems to be in a pink of its health. The NPAs, the net NPAs, as well as the gross NPAs are very much on a declining curve. I don't see the earlier fear of the NBFC sector, which was igniting some fear in the banking sector, that whether the NBFC sector not being in good shape, and therefore the as a lending pattern that will impact or not. If you look at the way the stock market has done well in the last few sessions, the banking sector has been in the forefront. What you have seen is that the net interest margin is not been squeezed, and what is even more interesting is that all this has happened at a time when you are seeing renewed interest of foreign banks to come and open up their Indian, either their Indian branch or acquiring Indian banks. You have gone seen the Sumitomo Bank acquiring an important stake in one of the Indian banks. And then you have got the United Arab Emirates Bank coming and acquiring a stake in and expressing a desire and an intention to acquire a 60% stake in RBL Bank, which is to be known as Ratnabar Bank Limited. So the banking sector space is become very active, and I would not disconnect or dissociate the banking sector movements in the stock market with what is really happening in these acquisition and merger space in the banking sector. Coming to your question on the CPI, yes, the Consumer Price Index is on a decline, and it is, as RBI itself has pointed out, that it has opened a policy space for probably further cuts. But please remember that there is a lot of time yet to go. In December is the next policy time, and the RBI's own estimate for the inflation projection for next year is not very, very, very positive. It is actually gradually on an upward curve next year. I mean, talking about the next calendar year. So therefore, whatever gains that you have on the CPI front, which is the retail price front, has to be looked at a little cautiously. And also remember that the government's fiscal position is under watch because of whatever has happened in the GST rate rationalization. And we have to see how well the government's revenue coffers are well protected in spite of the GST Vachatotsav.
और यहाँ पर कार्यक्रम में हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख बना रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग 1.4%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% से अधिक, हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.6% से अधिक, जापान का निकेई लगभग 0.3% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगातार पांचवें दिन 0.2% से अधिक बढ़ा। और यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी आज दिन के कारोबार के दौरान बढ़त चल रही थी। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.5%, लंदन का फुटसी 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.2% से अधिक पर कारोबार कर रहे थे। भट्टाचार्य जी, लगातार हम देख रहे हैं एशिया के बाजार, यूरोप के बाजार, सभी में बढ़त का दौर है। कुछ बाजार ऐसे भी है, जैसे अगर हम दक्षिण कोरिया का जिक्र करें, लगातार रोज ही उनमें बढ़त हमें दिखाई दे रही है। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो लगातार बाजार को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं?
देखिए, जो ग्लोबल जो इकोनॉमी या ग्लोबल मार्केट्स की हम बात करते हैं, तो यूरोप में ऐसा है कि यूरोप काफ़ी दिन से एक नरम फेज से गुजर रहा था
जी,
और इस वक्त जो थोड़ी बहुत यूरोप के साथ यूएस का जो संपर्क जो है ट्रेड का, उसमें काफ़ी एक स्टेबिलिटी आई है, एग्रीमेंट हुआ है, यूके के साथ भी हुआ है, यूरोप के साथ भी हुआ है, जापान के साथ हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मार्केट यूरोप में, जापान में, कोरिया में ये समझते हैं कि जो उनकी जो एडवर्स इम्पैक्ट है उनके मार्केट के ऊपर, उसकी उनकी चीज साइज क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है। अभी तक क्या था, उसको उनको ये नहीं मालूम था कि किस तरह से वो बढ़ेगा। और उसी के संदर्भ में मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि जो चाइना का जो उछाल जो देख रहा हूँ, वो चाइना का उछाल एक आश्चर्य हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो खबर आ रही है, उन्होंने ट्रंप साहब कहते हैं कि 150% कि वो टैरिफ लगाने के सोच रहे हैं, पर चाइना का जो इंटरनल स्ट्रेंथ है शायद, या जो जो रेयर मिनरल्स की जो स्ट्रेंथ जो है, उसी को शायद ये चाइनीज मार्केट को भी उसको सपोर्ट दे रहा है। अल्टीमेटली मार्केट्स इस वक्त वही रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो उनके इंटरनल इकोनॉमी, उनकी जो स्टेबिलिटी इंडेक्स जो है वो दर्शाता
है। तो इसका क्या अर्थ हम ये निकालें कि ट्रंप साहब जिस तरह के टैरिफ वॉर में लोगों को उलझा रहे थे, और वो चाहे चीन की बात हो, भारत की बात हो, तो सारे देशों ने अपने तरीके निकाल लिए हैं उससे निपटने
के लिए। मुझे लग रहा है कि जो ट्रंप का जो एक शब्द मैं प्रयोग करूंगा, हुआ जो था वो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त काफी अब सीमित हो गया है। लोग उनको ठान गए हैं कि ये यही है, और इसीलिए आप अगर देखेंगे जो विदेशों के बाजार या कि भारतीय बाजार में भी जो अब जो फैक्टर्स जो को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो ट्रंप साहब की स्टेटमेंट नहीं कर रही है जितने की डोमेस्टिक फैक्टर्स, डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स, डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर्स इंपैक्ट कर रही है।
We're heading for another short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. Welcome back to Market Mantra. Let's now move on to the US markets with our expert AKB. Wall Street closed in positive territory on Monday, buoyed by gains in finance and technology stocks. Investor sentiment received an additional boost after the White House economic advisor Kevin Hassett said in a private news channel interview that the federal government shutdown is likely to end this week. Among the major indices, the tech-heavy NASDAQ Composite Index rose almost 1.4% to close at 22,991. The Dow Jones Industrial Average increased over 1.1% to end at 46,707. And the S&P 500 climbed nearly 1% to end at 6,735. AKB, we know that the U.S. Stock market indices have been driven by AI. Driven companies and the valuations have been going up to all-time highs. But if you look at it fundamentally, unemployment for August is at 4.3%. It's gone up from 4.2% in July. And that's as far as jobs is concerned. Inflation for August is 2.9% as against 2.7% in June and July. How is the government shutdown for federal workers? How is that impacting the U.S. economy in terms of decision making and in terms of its productivity, GDP, and of course its relations with other countries in terms of imports and exports?
I think in terms of direct impact on the pace of economic activity by private entities, I don't think so far it has had any major impact. Of course, people are a little more wary of stepping out or going out to various organizations that offer you federal services. So I don't think it has had such a major impact. Where it has made an impact is the impact is on the sentiment that what kind of a system is the U.S. where for weeks together the federal services remain shut, creating problems for a large number of people going on furloughs. So therefore a larger challenge is seen from that point of view.
In more news, Prime Minister Narendra Modi has said that Bharat has emerged as a symbol of both stability and sensitivity at a time when the world is going through multiple crises. In a letter to the citizens of the country on the occasion of Diwali, Mr. Modi said that India is on track to become the third largest economy in the world in the near future. He said in this journey of a Viksit and Atmanirbhar Bharat, it is a primary responsibility of every citizen to fulfill the duties toward the nation.
और चलते हैं अगली खबर की ओर. 8 कोर उद्योगों के संयुक्त सूचकांक द्वारा मापे गए भारत के बुनियादी ढांचे के उत्पादन में इस वर्ष सितंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3% की वृद्धि हुई है. इस वर्ष अगस्त की अंतिम वृद्धि दर को 0.2% की बढ़त के साथ संशोधित कर 6.5% कर दिया गया. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने इस्पात, सीमेंट, बिजली और उर्वरक सहित भारत के 4 प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई. इस्पात उत्पादन में 14.1%, सीमेंट उत्पादन में 5.3%, बिजली उत्पादन में 2.1% और उर्वरक उत्पादन में 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई. और भट्टाचार्य जी आप कुछ और चलते हैं अगली खबर की ओर. जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव की 22 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है. इससे समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंच रहा है. आज की इस कड़ी में देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मजबूत बनाने में जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है.
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कर राहत की घोषणा की है. नए कर ढांचे के तहत 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 5% और 1800 सीसी से अधिक इंजन की क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 18% कर लग रहा है. साथ ही ट्रैक्टर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों जैसे टायर और गियर पर भी 5% कर लग रहा है. बस, ट्रक और डिलीवरी वैन सहित वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर लगने वाले वस्तु और सेवा कर को 18% कर दिया गया है. सरकार ने मोटर कार और बाइक के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों पर कर को 18% कर दिया है. साथ ही बाइक और छोटी कारों पर कर की दर में 10% की कमी की गई है. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी के कार डीलर अरविंद ने कहा कि कर में कटौती से ग्राहकों को लगभग 10 से 12 हजार रुपए की बचत हो रही है और इससे बिक्री में बढ़ोतरी आ रही है. दरों में कटौती से इन वाहनों और उपकरणों की खरीद की सामर्थ्य और इनकी मांग बढ़ रही है. नए जीएसटी युक्तिकरण से लॉजिस्टिक्स लागत कम हो रही है और निर्यात में सुधार हो रहा है. रिशु के साथ दृष्टि पुण्यानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
In more news, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.5% up at $61.34 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.7% higher at $57.93 per barrel when reports last came in. And moving on to the bullion market now, in the special Diwali Muhurat trading session conducted at the multi-commodity exchange, gold for December contract closed over 0.2% down at 1,28,000 rupees per 10 grams, and silver for the December contract also ended over 0.2% down at 1,50,000 rupees per kilogram when reports last came in.
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. भट्टाचार्य जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
नमस्कार. धन्यवाद.
Benchmark domestic indices end on a special one-hour Muhurat trading session with gains. Sensex increases by 63 points. Nifty closes at 25,869. Major Asian indices end in positive territory and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।